हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्यांगा द्विवेदी एंड हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने बिंदुसार शासक के तक पढ़ लिया था हमने एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ अशोक. सो लेट्स स्टार्ट. अशोक 273 to 232 ईसा पूर्व. जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया. दक्षिण भारत से प्राप्त मासिकी तथा गुज्जरा अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है. जैन अनुश्रुति के अनुसार, मतलब उनकी जो मान्यता है उनके अनुसार, हमें ये पता चलता है कि जो अशोक थे यानी कि बिंदुसार के जो बेटे थे, उन्होंने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, मतलब उनकी बिना जानकारी के, उन्होंने मगध पर शासन का अधिकार कर लिया था. और दक्षिण भारत में एक गुज्जरा नामक अभिलेख है जिसमें से पता चलता है कि इनका नाम अशोक था. अभिलेखों में अशोक देवनम पिय तथा देवनम पियदस्सी उपाधियों से विभूषित हैं. तो अलग अलग जो अभिलेख हैं उनमें इनके ये अलग अलग दो नाम हैं जो बताए गए हैं. विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था. उससे पुत्री संगमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ. अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी का कारुविका का उल्लेख भी मिलता है. हमें ये बताया जा रहा है कि इनका विदिशा की एक राजकुमारी थी, उनसे विवाह हुआ था और फिर इनके दो बच्चे थे, एक बेटी थी संगमित्रा और पुत्र था महेंद्र जिसका जन्म हुआ था. और इनकी रानी के बारे में भी काफ़ी अभिलेखों में मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है. राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अन्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया. उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेशों के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था. जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब ये राजा बने थे, उसके 7 ईयर्स लेटर इन्होंने कश्मीर का कुछ भाग कश्मीर और खेतान का जो भाग था ये इन्होंने कॉन्कर कर लिया था. एंड उस टाइम तक इनके पास ऑलरेडी अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग और बाकी भी क्षेत्रों का काफ़ी सारा जो एरिया था ये इनके साम्राज्य में पहले से ही था. राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1,00,000 लोग मारे गए. हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन का कर रहा था. तो हमें ये बताया जाता है कि इनका जब राज्याभिषेक हुआ, जब ये राजा बने, उसके 8th ईयर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया था कलिंग पर जिसमें 1,00,000 लोग मारे गए थे. और हम हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो वहाँ पर शासन कर रहा था कलिंग पर, वो था नंदराज शासक. नंदराज जो था उस टाइम पर वहां पर शासन कर रहा था, वो राजा था वहां का जब इन्होंने आक्रमण किया है. इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शास्त्र त्याग की घोषणा कर दी. मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई. तो इस टाइम पर जब इन्होंने, अशोक ने वहां के जो लोग थे उन लोगों को इतना विचलित कर दिया कि वहां पर शास्त्र त्याग की घोषणा कर दी और मगध का जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई, मतलब उनके हिसाब से बनाई गई क्योंकि इनने कलिंग को कॉन्कर कर लिया था. श्रमण निर्ग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्मा घोष अपना लिया. तो उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, दीक्षा ले ली थी बौद्ध धर्म की. बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगिणी कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था. जब उन्होंने बौद्ध धर्म का उपासक बने, जब उसको अपनाया, तो उससे पहले वो किसके फॉलोअर थे, वो शिव भगवान के फॉलोअर थे. बाद में वह गुरु मेघली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया. बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकाओं के निवास हेतु चार गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो इससे पहले उन्होंने जो बराबर की पहाड़ियां थी, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं था, वहां पर आजीविकों के लिए, निवास के लिए उन्होंने वहां पर चार गुफाओं का निर्माण करवाया था, चार केव्स बनवाए थे, जिनका नाम था सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और दूसरा चौथा था कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की धम्मा यात्रा की थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्याभिषेक के 10th और 20th जो उनका ईयर था उसमें क्या किया। रुम्मई देई अभिलेख के विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। तो जो ये अभिलेख है इससे हमें पता चलता है कि वहां का जो टैक्स था, जो लैंड टैक्स था, वो उन्होंने 1/6 को हटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। जो लेख है उनके उसमें ये बताए गए हैं, जो उनका शिलालेख है ना, इनके इसमें बताए गए हैं कि चेर, चोल और पांड्य, केरल, ये सब इनके स्वतंत्र राज्य थे। राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शासक शाक्य कहा है। राज्याभिषेक से संबंधित जो इनका शिलालेख बना था उसमें उन्होंने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। फिर धम्म, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। धम्म का मतलब हमें बताया गया है कि अशोक ने जो लोगों के अच्छे जीवन के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो कार्य, जो आदर्श उन्होंने फॉलो किए थे, उसे धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ में, स्तंभ लेख में दी गई है। उनके अनुसार पाप कर्म से निर्वित विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। मतलब उनके अनुसार जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, मतलब किसी पर दया दिखाना, किसी का काम कर देना, कल्याण करना, है ना, दान करना, ये सारी चीजें उनके लिए धम्म कहलाई जाती थी। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध ना करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। जो धम्म जिन्हें ये बोलते थे उसकी क्या क्या शर्तें हैं कि आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, आपको अपने स्वभाव में एक बहुत मधुरता लानी पड़ेगी, आपको दया भावना होनी चाहिए आपके अंदर, आपको दान करना चाहिए, आपको सबके साथ इक्वल रहना चाहिए और बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी उनकी कंडीशंस थी धम्म को लेकर। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म के अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भभ्रु शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों, बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इनका जो तीसरा जो अभिलेख था उसके अनुसार धम्म का संग्रह और अल्प व्यय भी विधान था। मतलब उनका जो मतलब था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इनका जो शिलालेख है उसके अनुसार इन्होंने बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, तीन रत्न हैं, उनको बहुत ही सम्मान दिया है, आस्था प्रकट करी है उनके प्रति। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशंबी तथा पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दिया कि संघ के फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। सांची और जो सारनाथ में, सारनाथ का जो इनने मंदिर बनाया था, सांची स्तूप बनवाया था, तो इनके एक स्तंभ लेख के अनुसार हमें ये पता चलता है कि इन्होंने कौशंबी और पाटलिपुत्र के जो महामंत्र थे उनको आदेश दिया था कि जो फूट डालने वाले जो भिक्षु भिक्षुणियों हैं उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, जो गलत बातें करते हैं, जो सही नहीं करते, उनका वो जो रूल उन्होंने बोला है वो फॉलो नहीं करते, तो उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध ना किया जाए। और उनके जो प्रथम शिलालेख उसमें ये बताया गया था कि जब भी कोई आप पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, उसमें पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि जब ये टीवी पे भी कभी कभार दिखाते हैं कि जंत्र मंत्र हो रहा है और ये सब हो रहा है, जो ये बाबा होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, बोलते हैं अगर पशु की बलि चढ़ जाएगी तो तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। बट इन्होंने उस चीज़ को वहां पर अपोज किया, इसका विरोध किया और मना किया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता था कि हम एक मासूम की जान ले रहे हैं बिना मतलब में। उसका क्या मतलब, क्या उसकी बेचारे की गलती है कि तुम उसकी ऐसी जान ले रहे हो, तो ये सब कुछ बहुत गलत है। धम्म यात्रा, अशोक के पूर्व विहार यात्राएं की जाती थीं, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। धम्म यात्रा से पहले लोग विहार यात्राएं करते थे, मतलब जंगल की यात्राएं करते थे, जिसमें जो राजा थे वो शिकार करते थे पशुओं का। लेकिन इन्होंने क्या इन्वेंट किया, अशोक ने इन्वेंट किया धम्म यात्रा, जिसमें बौद्ध जो स्थान है वहां पर यात्रा की जाएगी, बौद्ध स्थानों पर, और ब्राह्मणों और शमरों को और वृद्धों को स्वर्ण दान में दिया जाएगा। अनुसंधान, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रदोषकों, राजुकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। इनका जो एजेंडा था वो किस प्रकार था कि ये क्या करते थे, अपने राज्य के जो कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं वहाँ के, उनको हर 5 वर्ष में धर्म प्रचार के लिए बाहर भेजा जाता था, यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया था, जो यात्रा थी इसे अनुसंधान कहा गया था। धम्म महायात्रा, महामात्र, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता को धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास के कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। तो धम्म मात्रा में इनने जिनको नियुक्त किया था, जिनको अपॉइंट किया था अपने 14th ईयर फ्रॉम बीइंग अ किंग, तो इन्होंने क्या बोला था कि आपको धम्म का प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को कल्याणकारी और दानशीलता, उनके अंदर प्रोत्साहन आपको देना होगा, और कारावास के जो कैदी हैं या तो आप उन्हें फ्री कर दीजिए या उनकी सजा कम कर दीजिए, और जो कैदी हैं उनके परिवारों की आर्थिक समस्या का आप ही को ध्यान रखना है। देन कम्स अभिलेख, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, मंदसौर, शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। इनके जो अभिलेख थे, ये ऐसे एक शासक थे जिनके अभिलेख के माध्यम से इन्होंने अपनी सभा को, अपने जितने भी राज्य थे उनको प्रेजेंट किया था, और इसकी जो उनको प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन मिली थी, दैट ही गॉट फ्रॉम द ईरानी राजा, ईरानी राजा जो थे उनसे इनको ये इंस्पिरेशन मिली थी। इनके ज्यादातर जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में होते थे, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में जो मिले थे वो खरोष्टी लिपि में थे। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटिओकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। जब इनका एक स्तंभ दिल्ली से लाए गए तो उसमें 7 अभिलेख लिखे हुए थे, और इसमें जो एक राजा था यवन नरेश एंटिओकस, उसके बारे में भी बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। और इनके स्तंभ को पहली बार किसने पढ़ा था और समझा था, उसका नाम था प्रिंसेप, हाँ जेम्स प्रिंसेप था उसका नाम। ताम्परनी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनपिय की उपाधि धारण की थी। उन्होंने खुद का जो एक स्टेटस है, वो जो नाम उन्होंने रख लिया था, वो देवनम्पिय रख लिया था। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ के श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पर्दापण माना जाता है। तो उन्होंने जब उनको इनवाइट किया था अशोक को, तो वहां पर उनका जो पुत्र था महेंद्र, वो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पर पहुंचा था और फिर श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना, मतलब उस टाइम पर वो एक एम्बेसडर के रूप में वहां पर गए थे। 24 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। 40 वर्ष उन्होंने अपना जो राज्य भार था वो संभाला और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। चलिए तो अब हम इसमें जानेंगे कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था और मौर्य साम्राज्य का खात्मा कैसे हुआ। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावादन में धर्म विद्वान कहा गया। राजतंगिनी के अनुसार उस समय जालौक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। देखिए, जब अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद 50 सालों तक उसके ही कमजोर शासक वहां पे रहे, उसके कमजोर उत्तराधिकारों ने वहां पर शासन किया। कोई इतना स्ट्रोंग और इतना इंटरैक्टिव नहीं था जितना अशोक थे। उनके बाद उनका जो कुणाल है वो राजा बना, तो जिसे दिव्यावदान में धर्म विद्वान कहा गया। ये अलग एक अभिलेख होगा जिसमें ये नाम दिया गया। फिर राजतंत्र गिणी के अनुसार उस समय जालौक का जो राजा था कश्मीर, जालौक जो था वो कश्मीर का राजा था। और तारानाथ के अनुसार अशोक का जो पुत्र है वो गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। तो ये अलग अलग ग्रंथ या अभिलेख है जिनके अनुसार हमें पता चल रहा है। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया था। कुणाल जो था वो अंधा था, तो उसकी वजह से जो मगध का जो प्रशासन था पूरा वो उसके पुत्र ने संभाला। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। उन्होंने क्या किया कि दशरथ, कुणाल के जो पुत्र थे दशरथ, उसने भी मगध पर शासन किया था और उसने जो नागार्जुनी नाम की जो गुफाएं थी वो आजीविकों को दान में दे दी थी। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की शासन की नींव डाली। जो बृहदत्त था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उसका जो महामंत्री था, ब्राह्मण जो मंत्री था, उसने खुद ही उसकी हत्या करके और वहां पर वो जो राजगद्दी थी उसे हथिया लिया और शुंग वंश की शासन शुरू कर दी। अब हम आ जाते हैं मौर्य प्रशासन पर। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, मतलब सेंट्रल गवर्नेंस की उस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट हुई थी पहली बार। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। कौटिल्य जो थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने राज्य को 7 अलग-अलग अंगों में बांटा था, जो कि था राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के रूप में। फिर राजा ने जो मुख्यमंत्री और जो पुरोहित की नियुक्ति होती थी तो वो उनके चरित्र की भली भांति के जांच के बारे में, मतलब अच्छे से उनके बारे में सब कुछ पता करके कि वो इंसान कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद ही की जाती थी। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद था। ये जो पूरी जो क्रिया होती थी, जो पूरा ये सिस्टम होता था, इसे अपधा परीक्षण कहते थे। कि मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई गलत व्यक्ति हमारे राज्य में आ जाए या कोई ऐसा आ जाए जो राजद्रोह कर दे हमारे साथ। तो ये जो स्टेप्स थे ये लिए जाते थे। और मंत्रिमंडल के अलावा यहाँ पर जो मंत्रिण होता था उसे मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, मंत्री परिषद होता था वो। केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। केंद्रीय शासन में जो अर्थशास्त्र है उसमें 18 विभागों का उल्लेख है कि अलग अलग 18 विभाग हैं जिनको तीर्थ कहा गया है, और इनके अध्यक्ष जो थे उन्हें महामात्र कहते थे, जो इनके हेड थे उनको महामात्र कहा जाता था। तो जो मेन तीर्थ थे वो कौन थे? मंत्री थे, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। ये जो था समाहर्ता, इसका काम क्या था कि एक राजस्व बनाए रखे, मतलब पूरे जो राज्य को इकट्ठा करके चले, और जो सामान का आना जाना हुआ है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, या जो भी हमारा करेंसी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज होती थी, पूरा फाइनेंशियल बजट बनाने का काम इसी का हुआ करता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र के 26 विभाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि, पण्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूनाध्यक्ष बचूड़खाना, विविधताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष पैतवाध्यक्ष, बंध नागराध्यक्ष, युक्त व उपयुक्त, महामात्या तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो ये जो कर्मचारी थे इनको अलग अलग चीजों की बारे में नियुक्त किया गया था, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई कृषि अध्यक्ष था, कोई व्यापार का था, तो कोई कताई बुनाई का था, कोई बचोड़ खाने का था। तो इन सबको अलग अलग स्टेजेस पर इन लोगों को अपॉइंट किया गया था हर एक चीज की देखरेख करने के लिए। और ये जो भी लोग थे, ये लोग महामत्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में अपॉइंट किए जाते थे। जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम पर अभी होते हैं ना, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उस तरीके से इन लोगों को भी उस टाइम पर नियुक्त किया जाता था। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, मतलब 5 स्टेट्स का। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंतराष्ट्र, उज्जयिनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापात, सुरवणगिरी, मध्य देश, पाटलिपुत्र, प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आय पुत्र नामक पदाधिकारों द्वारा होता था। तो ये जो राज्य थे इनका शासन कौन करता था? या तो आर्यपुत्र करते थे या फिर कुमार, राज्यवंशी जो थे वो करते थे। तो इसके अलग अलग साम्राज्य थे, 5 प्रांतों में बटा हुआ था जो प्रांतीय प्रशासन था। तो जो मगध का साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा था, उनके कैपिटल के साथ इनका नाम यहाँ पर हमें बताया गया है। प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। यानी कि जो 5 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उसमें ये बटा हुआ था, और ये जो 5 सब्जेक्ट्स में जो काम करते थे वो विषयपतियों के अधीन थे, मतलब उनके अंडर काम करते थे। और जो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था, मैनेजमेंट ऑफिसर था, उसे स्थानिक बोला जाता था, जो कि सहसमर्ता के अंडर काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांव का शासन संभालता था। सहसमर्ता समाहर्ता के अधीन प्रदेशित्र नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। सबसे छोटी जो यूनिट हुआ करती थी ऑफ द गवर्नेंस वो हुआ करती थी गोप, जो कि 10 गांवों का जो प्रशासनिक औरा है वो संभालता था। और इनके अलावा और भी इनके अंडर में जो ऑफिसर्स होते थे, जो इनके जो नेता होते थे उस टाइम पर, उन्हें अधिकारी ये मिलता था, उनको ये अधिकार मिलता था कि वो गोप और ग्राम के अधिकारियों के कार्यों की जांच करे। ये उनका काम था कि ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब की जांच वो करते थे। नगर शासन, अभी हमने पढ़ा प्रांतीय शासन, अब आ जाता है नगर शासन। मेगस्थनीस के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदियों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों के विभक्त था। मतलब 30 सदस्यों का एक मंडल वहां का शासन करता था, जिनमें 6 समितियां थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री करके रूप में वसूलना। तो इसमें अलग अलग समिति बना दी गई थी जिसके अनुसार सब लोगों का अलग अलग काम था और उन समितियों के अनुसार सब लोग अपना अपना काम करते थे। सैन्य व्यवस्था, अब यहाँ की जो आर्मी की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों से विभक्त था, मतलब कि एक अलग ही सैन्य विभाग था जो इन 6 समितियों से अलग था, इनके साथ नहीं था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, नहीं सॉरी, इनके साथ ही होता था और 6 के 6 समितियों में ये लोग होते थे। हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। तो अलग अलग जो डिवीजन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कि जो पैदल चलेगी जो सेना, जो घोड़े पर रहेगी, जो हाथी पर, जो रथ पर और जो नौसेना होगी, तो इनका अलग अलग डिवीजन कर दिया था और ये लोग देखरेख करते थे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। जो सैनिक प्रबंध का देखरेख करता है उस अधिकारी को क्या बोला जाता था? अंतपाल बोला जाता था। आप लोग है ना, इसको जो जो चीजें जिनका नाम अलग अलग बताया जा रहा है ना, जैसे सैनिक अधिकारी जो होता है उसको अंतपाल कहते हैं, तो इन सबको ना आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। जब रिविजन दोबारा करेंगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बार बार पूरा पूरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही इस बुक में इतना पास पास सब कुछ लिखा हुआ है ना कि देखना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था, मतलब जो बॉर्डर एरियाज होते थे वहां की देखरेख भी अंतपाल करता था। मेगस्थनीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। मेगस्थनीज की जो अभिलेख है इंडिका, उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर उसके पास 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक, 50,000 घोड़े पर बैठने वाले सैनिक, उसके बाद 9,000 हाथी और 800 रथ से सुसज्जित एक बहुत बड़ी सेना थी। न्याय व्यवस्था, अब वहां पर जो ज्यूरिडिक्शन है वो कैसा हुआ करता था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब जो सुप्रीम जज है दैट वॉज द जो सम्राट है वहां का, साम्राज्य का जो हेड है वो हुआ करता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय से अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, मतलब जो ग्राम संघ था और जो राजा का जो मेन न्यायालय था, उसके अलावा बाकी सारे अलग अलग 2 प्रकार के न्यायालय थे वहां पर, कोर्ट थे, न्यायालय मतलब कोर्ट। पहला था धर्मस्थीय, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्य या व्यावहारिक और 3 आमत्य करते थे, मतलब 3 लोग यहाँ पर करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। तो यहाँ पर कौन कौन से विषय पर जांच पड़ताल होती थी, मुकदमा चलता था, चोरी, लूटमार, इन सब के बारे में, और जिनको क्या कहा गया है, इन सारी जो अपराध होते हैं इनको साहस कहा गया है। आप लोग इसे प्लीज हाईलाइट करते चलिएगा, यहाँ पर बहुत से वर्ड है जिनके अलग अलग नाम है, तो ये आ सकता है एग्जाम में आपके। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालयों में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक परुश्चय या दंड परुश्चय कहा जाता था। तो जो ये मानहानि के केस हुआ करते थे और अपशब्द अगर किसी ने बोल दिया, आपके साथ मारपीट करी है, ये सारे मामले भी आपके जो थे धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे, और इन मामलों को क्या बोला जाता था, वाक परुश्चय या फिर दंड परुश्चय बोला जाता था। दूसरा था कंटक शोधन, ये फौजीदारी अदालतें थी। 3 प्रदेशी तथा 3 आमत्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। ये जो थी फौजदारी अदालतें थी, मतलब यहाँ पर जो दो राज्य का अगर विवाद हो गया है तो उसका यहाँ पर निर्णय लिया जाता था। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहते थे। अब इसमें भी अलग अलग नाम है कि जो नगर का न्यायाधीश है उसे व्यावहारिक महामात्र कहेंगे और जो जनपद का न्यायाधीश है उसे राजयुक्त कहेंगे। चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंग हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो ये चार पार्ट्स थे जिसमें चाणक्य ने कानून को बांटा हुआ था। मौर्य कालीन समाज, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगस्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगस्थनीज की जो इंडिका बुक है उसमें और अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। उन्होंने चार वर्ण जो होते हैं हमारे, चार जो जैसे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये होते हैं, ये इसमें चार वर्ण होते हैं, तो इनके क्या क्या काम होने चाहिए वो भी इन्होंने इसमें बता के रखा हुआ था। चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य के अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, शता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया गया है। मतलब चार जो वर्ण थे उनके अलावा भी जो जातियां थी उनके बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण सात जातियों में किया गया है। भारतीय समाज का जो वर्गीकरण है, मतलब जो डिविजन है, वो मेगस्थनीज के इंडिका बुक के अनुसार सात जातियों में किया गया है, जिसमें से सातों के नाम दिए हैं हमें यहाँ पर। दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्प, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। तो मतलब इनका जो डिवीजन है वो अलग प्रकार का है। मौर्य काल में स्त्रियां की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छे स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। मौर्य काल में जो विमेन्स की जो कंडीशन थी उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में उनका जो कंडीशन था काफी अच्छा था और उनको दूसरी शादी का करने का वहां पर परमिशन था, मतलब वो कर सकती थी दूसरी शादी। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 5 पर। इसमें 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे और उनकी राजधानियां क्या थी उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है मैप में। मैप वर्क तो आप लोगों को हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 नंबर का या 6-7 नंबर कुछ का, मतलब मिनिमम 5 नंबर का तो मैप आता ही आता है, हो सकता है 6 नंबर का भी आ जाए। तो मैप तो बहुत ही अच्छे से करना, मतलब आप समझ लो फोकट के नंबर मिलते हैं आपको 5 नंबर, तो आप अगर मैप अच्छे से कर लोगे तो 5 नंबर तो ऐसे ही आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मैप में अच्छे से गो थ्रू करिएगा। इसमें आपको 16 जनपदों के बारे में बताया गया है और नीचे वाले मैप में मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आप लोग खुद से एक बार देख के कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 6 में हमें सांची स्तूप दिखता है जो कि अशोक ने बनवाया था। देन कम्स अशोक स्तंभ, जिसे हम वो बोलते हैं नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है जिसमें चार शेर होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अशोक कालीन अभिलेख लिपि। इस लिपि में लिखा जाता था, तो ये जो लिखा हुआ है ना इनने, ये अपने अभिलेख लिखे हैं। उस टाइम की जो लिखावट है वो ऐसी हुआ करती थी। अब जो इसे समझ ले वो तो फिर समझ ही लेगा, जो नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से, फ्रॉम शुंग वंश। तो ये हमारा फ्रेश स्टार्ट होगा, क्योंकि अशोक के बाद यहाँ पर कौन सा वंश आ गया था, शुंग वंश आ गया था। चलिए, टिल देन कीप रिवाइजिंग।